हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक का हमने अध्ययन किया जो आज पांचवें अध्याय में अध्ययन करेंगे, लेकिन आज पांचवें अध्याय में हम जाएंगे, कुछ बातों पर हम विचार करेंगे। तो जब हम पांचवें अध्याय में आते हैं तो इसका हमने थीम देख सकते हैं, एक शीर्षक मुख्य विषय कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह वध किया हुआ मेमना सर्व सामर्थी एवं सर्व अधिकारी है। सच है, प्रभु यीशु मसीह अगर वध ना किया होता तो मेरे और आपके लिए आज यहाँ पर एक कलीसिया ना होती। लेकिन जब हम बिंदुओं को बांटते हैं, चार या पांच मुख्य बिंदु को देखेंगे। पहला, पांचवें अध्याय के पहले पद में है पुस्तक में जो सात मोहर है उनका परिचय है। दूसरे पद से लेकर पांच पद तक एक मुख्य प्रश्न है, कौन इन पुस्तक को खोलने के योग्य है, कौन इस पुस्तक को या मोहरों को खोलने के योग्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पांचवें अध्याय में है। तब उसके बाद छठे और सातवें पद में उत्तर है, छः सात पद में, मेमना जो वध किया हुआ है क्यों, उसको आगे चल के विस्तार में हम देखेंगे। और तब पांचवें अध्याय के आठ पद से लेकर चौदह पद तक में मेमने की आराधना देखते हैं। सो यहाँ पर हम पूरी आराधना की या उपासना को हम देख रहे हैं। बहुत अच्छा चित्रण है। सच है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है बहुत ही गंभीर है, कठिन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर के लोगों के लिए, उन बाइबल के सेवकों के लिए, प्रचारकों के लिए, विद्वानों के लिए, जिन्होंने गहन अध्ययन करके इसके अर्थों को मेरे और आप तक पहुंचाया है विभिन्न रीति से। और हम उन पुस्तकों को पढ़ने के द्वारा, उनके संदेशों को सुनने द्वारा बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। और जब हम खुद अध्ययन करते हैं तब भी कुछ कुछ बातें परमेश्वर हमारे सामने लाता है और हमें सिखाता चला जाता है। सो परमेश्वर की सहायता से हम आज इसको देखना चाहेंगे। सो चार अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात मैंने दृष्टि की। और हमने पिछली बार बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा था किन बातों के बाद, किन बातों के पश्चात। और हमने देखा था उन बातों के पश्चात, अर्थात न केवल कलीसिया युग स्मृति पर समाप्त हुआ और कलीसिया उठा ली गई है और उन सारी घटनाओं को हमने देखा था। अब कलीसिया जिसको रैप्चर बोलते हैं, रैप्चर शब्द कई बार हम समझते नहीं, लेकिन हिंदी में इस शब्द का अर्थ है हवाओं में बादलों पर उठाया जाना, बादलों पर उठाया जाना। और बार 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 मैंने बताया था कि करीब 18 रेफरेंस है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा या उसके शिष्यों के द्वारा इस बात को स्पष्ट बताते हैं कि कलीसिया बादलों पर उठा ली जाएगी। बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हमें याद रखना है। और तब भी हमने देखा था कि 24 प्राचीन और 24 प्राणी का किस रीति से वो आराधना करते हैं, किस रीति से। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी संख्याओं का वर्णन है, बहुत सारी संख्याओं का वर्णन है। 24 हमने था 12 ट्राइब, 12 गोत्र और 12 शिष्य पूरे विश्व को वर्णन कर रहा है कि पूरा विश्व किस प्रकार से, चाहे वो गोत्र से हों चाहे प्रेरित से हों जिन्होंने पूरे संसार में जा करके सुसमाचार प्रचार किया है, वो सचमुच में सब साथ मिलकर के प्रभु की आराधना करेंगे। 12 संख्या जो शिष्यता की संख्या है, शिष्य या प्रेरित की संख्या है, और 7 जो दिखाता है वो सिद्धता को या परफेक्शन को या पूर्णता को, कंप्लीशन को दिखाता है। इसके बाद 3 संख्या जो है वो त्रियकता को दिखाती है। 4 जो संख्या है वो सुसमाचार को दर्शाता है, सुसमाचार जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं से संबंधित है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ जगत के सारे लोगों को, सारी जातियों को मेरा सुसमाचार प्रचार करो, और चारों दिशाओं में उसका सुसमाचार प्रचार किया गया है। सो इस बात को हमने देखते हुए 4 प्राणियों को देखा था, और 4 प्राणी में पहला प्राणी जो था वो सिंह है, सिंह के समान है। और हमने देखा था कि सिंह जो है प्रभु यीशु मसीह की राजत्व को प्रकट करता। दूसरा प्राणी जो बछड़ का है, ऑक्स, प्रभु यीशु मसीह सेवक है, वो सेवक को प्रकट करता है, प्रभु यीशु मसीह सेवक के रूप में आए। और हमने इसको देखा था 4 सुसमाचार इन सारी चीज़ों को वर्णन कर रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ हम पहले देख चुके हैं। तीसरा प्राणी मनुष्य है, जो प्रभु यीशु मसीह मानव पुत्र बनकर आए, पूर्ण मनुष्यता को प्रकट करता है। और चौथा प्राणी उकाब है, जो यीशु मसीह की ईश्वरता का वर्णन करता है। तो ये 4 अध्याय में हमने पिछली बारों में कुछ कुछ देखा था, लेकिन एक बात और देखी थी जो 4 अध्याय में, जिस प्रभु यीशु मसीह के लिखा है, परमेश्वर के लिखा है, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, परमेश्वर सर्वशक्तिमान। करीब 9 बार इस ये शब्द का इस नए नियम में उपयोग किया गया है 9 बार, पुराने नियम में काफ़ी है। और हमने इस बात को देखा था कि सबसे पहले लोगों ने परमेश्वर को सर्वशक्तिमान करके परमेश्वर करके पुकारा था, लेकिन अब्राहम ने उस वैसे पुकारा, याकूब ने वैसे पुकारा, इजाक ने वैसे पुकारा, और लेकिन बाद में चल करके जब मूसा आया तो मूसा को परमेश्वर ने अपने नाम को दिया जो नाम यहोवा है, और तब परमेश्वर ने कहा कि मैं यहोवा हूँ, और वहाँ से मूसा के द्वारा परमेश्वर का नाम सर्वशक्तिमान से हट करके यहोवा नाम शुरू हुआ। अब आज जो हम आगे बढ़ कर देखना चाहते हैं पहले पसे लेकर 14 पद तक, ये एक दर्शन जो किस रीति से वो मेमने के विषय में है, है ना, मेमने के विषय में पहले पद में लिखा है 5वें अध्याय के पहले पद में, जो सिंहासन पर बैठा था उसके दाहिने हाथ में मैंने एक पुस्तक देखी जो भीतर बाहर लिखी हुई थी तथा 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी, एक पुस्तक देखी जो उस समय, यहाँ पर पुस्तक शब्द आया है लेकिन इंग्लिश में स्क्रॉल है, और उस समय इस तरह से पुस्तकें नहीं लिखी जाती थी, वो मान लीजिए ऐसे लंबे लंबे चमड़े के पत्र होते थे और लिख करके उनको ऐसे फोल्ड किया जाता था, लिख कर उनको ऐसे फोल्ड किया जाता था और इस तरह से फोल्ड करके उसको धागे से बांधा जाता था और तब मोम से उसको सील बंद किया जाता था, मोम से। तो वो इस बात का वर्णन करा जो उसके हाथ में ये स्क्रॉल है वो किस प्रकार से वो 7 मोहरें उस पर लगी थी। अब उसको बारी बारी करके खोलना था, तो ऐसा था कि जैसे एक मोहर खोली गई तो एक स्क्रॉल निकला, उसमें बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है, तब उसके आगे 6 और अंदर है, फिर दूसरा खोला गया फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है। तो इस तरह से 7 पर्त में ये मोहर बंद, ये पेपर पुस्तक दी गई थी जिसमें सारी चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे एक एक पर्त खोले है, पिछली बार भी मैंने बताया था कि जैसे एक एक, क्यों, दानियेल की पुस्तक में उस समय सारी चीज़ें मोहर बंद कर दी गई थी, लेकिन अंतिम समय में कहा गया है वो अंतिम समय में खोली जाएंगी, अंतिम समय खोली जाएंगी, जो गुप्त गुप्त है अंतिम समय तक के लिए मोहर बंद है। अब वो समय आ गया प्रकाश वाक्य में कि वो मोहर बंद खोली जाए और खोल कर वो धीरे धीरे सारी बातें प्रकट कर दी जाए। अब जो गुप्त है वो खोला जा रहा है, खोला जा रहा है एक एक करके, और जैसे ही हम 6वें अध्याय जाएंगे तब हम देखेंगे, लेकिन अभी जो प्रश्न आ रहा है, अभी जो 5वां अध्याय है वो 5वां अध्याय में अभी कोई पुस्तक खोली नहीं जा रही है, लेकिन वहाँ 5वें अध्याय में खासतौर से हम वहाँ परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र की महानता को देख रहे हैं किस रीति से। तो प्रश्न है चिंता ही बातें कहते, 7 मोहर लगाकर बंद की गई। तब देखिए बात दूसरा पद में, फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा जो ऊंची आवाज से प्रचार कर रहा था। ये प्रचार क्या कर रहा है, प्रचार, एक बलवान स्वर्गदूत है जो ऊंची आवाज से प्रचार कर रहा है और वो कह रहा है कि इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य कौन है, कौन इस पुस्तक को खोले, वो पुस्तक जो बंद है, जो मोहर लगी हुई है उसको खोला जाना है, उसके खोले जाने के द्वारा सारी बातें जो अभी तक बंद है, छिपी हुई हैं, गुप्त हैं, वो अब धीरे धीरे स्पष्ट होनी है, उसके अनुसार संसार चलेगा, उसके अनुसार संसार में घटनाएं घटेंगी। परमेश्वर ने मुझे और आपको अंधकार में नहीं रखा, परमेश्वर ने अपने भेदों को प्रकट किया है समय 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 के अनुसार, और प्रकाश वाक्य में उन आने वाली घटनाओं को देख करके उसने उन बातों प्रकट किया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह थे यहाँ पर पृथ्वी पर तब भी उन्होंने अपने द्वितीय आगमन के कुछ चिन्हों को प्रकट किया था, मत्ती में, मरकुस में, लूका में, यूहन्ना में, चारों सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन से पहले होने वाली घटनाओं का वर्णन करते हैं और वो बताते हैं कि अंतिम दिनों में क्या होगा, भूकाल आएंगे, महामारी आएगी, बीमारियां आएंगी, लड़ाई होगी, जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, राज राज पर चढ़ाई करेगा, ये सारी चीज़ों को हम देखते चले आ रहे हैं, और हम देखते चले हैं धीरे 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 ये संसार उसी की ओर चलता चला जा रहा है। जब हम देख रहे हैं कि वचन के अनुसार संसार उसकी ओर चलता चला जा रहा है जो वचन में है, तो क्यों ना मुझे और आपको अपने आप को ऐसे तैयार करना है कि हम भी सावधान हो सकें, परमेश्वर का वचन सच्चा है, और ताकि सारी परिस्थितियों का हम सामना कर सकें और एक दिन आए कि हम परमेश्वर सामने आनंद के साथ खड़े हो सकें। तो परमेश्वर ने हमें मुझे और आपको अहंकार भी नहीं रखा। तो जैसे मैंने कहा मत्ती मरकुस लूका योना चारों सुसमाचार बहुत ही सुंदर से अपने द्वितीय आगमन का प्रभु यीशु मसीह वर्णन करते हैं। लेकिन अब प्रश्न आ रहा है कि पुस्तक खोलने के लिए योग्य कौन है? क्या कोई भविष्यता? नहीं। क्या कोई नबी? नहीं। क्या कोई और प्रेरित? नहीं। क्या कोई और राजा? नहीं। कोई याजक? नहीं। कोई नहीं उस पुस्तक को खोलता। जितने लोग इस ना केवल जिनका हम बाइबल में वर्णन पाते हैं, चाहे वो दानियल हो, स्वयं दानियल हो, चाहे वो दाऊद हो जो परमेश्वर की योजना के अनुसार था, जिसको हम आगे चल के देखेंगे, जो जो कोई भी हो उनमें से कोई योग्य नहीं है, कोई योग्य नहीं है। संसार का कोई व्यक्ति ना पृथ्वी पे ऊपर स्वर्ग के नीचे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो उस मोहर को खोल सके। और तब फिर क्या होता है? तो ये प्रश्न है कौन उस पुस्तक को खोल सकता है? मुझे और आपको इस बात पर ध्यान देना है। तब आगे चल के वो कहता है कि जब हम इस पुस्तक के खोलने के वाले बात कर रहे हैं, तो अभी हमने यर्मिया उसके 32वें अध्याय को पढ़ा था। अब इस बात को समझने की कोशिश करेगा कि यर्मिया 32 अध्याय एक घटना का वर्णन कर रहा है। यर्मिया बंधुआई में है और बंधुआई के साथ इसी तरह की चीज़ को हम पहले भी देखते हैं, इसी चीज़ को रूत की पुस्तक में देखते हैं, ठीक वही चीज़ जो रूत की पुस्तक में देख रहे हैं। पहली बात, उस समय भूमि इसराइल की भूमि मोल ली जाती थी लेकिन परमानेंट नहीं ली जाती थी। वो कुछ वर्षों के लिए एक आदमी ले सकता था, पर उसके बाद मृत्यु के बाद या किसी और कारणों से उसको पुनः उस लैंड को कोई रिलेटिव को लेना पड़ता था। तो उस भूमि को लेने वाले तीन उसके अंदर गुण होने चाहिए थे। पहली चीज, या तो वो कुटुंबी छुड़ाने वाला हो, पारिवारिक संबंधित हो, जैसे हम रूत में देखते हैं बुआज ने भूमि को छुड़ाया। बुआज जो था रूत का कुटुंबी था, उसने छुड़ाया। दूसरा, उसे योग्य होना चाहिए। और तीसरी चीज, वो व्यक्ति मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो। अब जो तीन गुण हैं, ये गुण छुड़ाने वाले के होने चाहिए। यही गुण हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। अब ये भूमि किसी और के अधिकार में, चाहे आप रूत की पुस्तक का पढ़ते हैं, चाहे यर्मिया की पुस्तक को पढ़ते हैं। यर्मिया की पुस्तक को और भी आगे पढ़ेंगे, हमने केवल 25 पद पढ़े। तो वो उसी चीज का, और वो जो छुड़ा रहा है वहां पर, वो भी यर्मिया का रिश्तेदार है, यर्मिया का कजन है, उसको वो उसको छुड़ा रहा है, वो उसका संबंधी है। दूसरी चीज, न केवल उसका संबंधित है, उसके पास योग्यता है, न केवल योग्यता है लेकिन वो पैसे या उस मूल्य देने की तैयार है। इसीलिए हम देखते हैं उसने चांदी के सिक्कों को तौला, तौल कर दिया और उस भूमि को छुड़ाया। तो चित्रण जो है आराम से लेकर हम वही चीज को देख रहे हैं, यहां पर भी हम प्रकाश वाक्य में वही चित्रण देख रहे हैं। लेकिन इसके बीच में हम अपने जीवन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन मुझे और आपको भी छुड़ाया। आदम की वाटिका में भूमि और जीवन परमेश्वर का था और उस भूमि पर अधिकार परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया था आदम की वाटिका में। लेकिन पाप आया और पाप के कारण हमने भी अपना अधिकार को खो दिया, भूमि ने भी अपने अधिकार को खो दिया। आप सब जानते हैं पाप के कारण भूमि किसके अधिकार में चली गई? पाप के कारण अब भूमि जो थी वो शैतान के अधिकार में चली गई। अब उसी लिए उसके बाद वो ऊंट और कटारे उगाने लगी। हमारा जीवन भी शैतान के अधिकार में हो गया। और शैतान को बाइबल में बार बार संसार का ईश्वर, संसार का क्रूर में वर्णन है, पहले पत्रस में वर्णन है, संसार का ईश्वर करके पुकारा। सो हमने अपने आप को या उस भूमि ने जो एक दिन परमेश्वर के अधिकार में थी, उसको हमने दूसरे के हाथ में दे दिया, दूसरे के हाथ में बेच दिया। वो शैतान है जो संसार का स्वामी है। अब पुनः हमें उस पूरे स्थिति में लाने के लिए, पुनः उसी स्थिति में लाने के लिए, पुनः अपना परमेश्वर का बनाने के लिए परमेश्वर ने वही कार्य किया। और वही तीन योग्यता उसके अंदर पाई गई। पहली चीज, वो संबंधी। परमेश्वर सृष्टि के कारण मेरा और आपका संबंधी बना है आराम से, क्योंकि वचन कहता है एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति के कारण पाप इस संसार में आया, तो एक व्यक्ति के कारण जीवन इस संसार में आया। एक व्यक्ति के कारण अगर मृत्यु इस संसार में आई, तो एक के कारण पुनरुत्थान इस संसार में आया। रोमियोस का 5 अध्याय, रोमियोस का अगर 5 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको यहाँ सारा चीज मिलेगी। तो रोमियोस के 5 अध्याय में एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति बार बार आया है। एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु आई तो एक व्यक्ति के द्वारा जीवन आया, एक व्यक्ति के द्वारा यह आया तो एक व्यक्ति के द्वारा। एक व्यक्ति कौन? आदम के द्वारा पाप आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया, आदम के द्वारा बंधुआई आई, तो प्रभु यीशु मसीह द्वारा छुटकारा आया। तो वो एक व्यक्ति जो संसारिक बन गया, शारीरिक बन गया, पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर के हाथों में दे दिया, अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके लिए आशा उत्पन्न गई। मेरे प्रियो, इसीलिए मैं बार बार इस बात को यहाँ कहता हूँ, सुसमाचार यही है और सुसमाचार को मुझे और आपको समझना है। सुसमाचार यह है कि मैं और आप पाप से छुड़ाए जाएं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, केवल ज्ञान मात्र नहीं है, केवल कुछ चीज को जानना नहीं है, लेकिन जो कोई उस पर विश्वास करे, क्या विश्वास करे, ये विश्वास कि मैं पापी व्यक्ति था, मैंने पाप के कारण अपने जीवन को शैतान के हाथ बेच दिया था, मैं शैतान के गुलाम में चला गया था, अब उस प्रभु ने, प्रभु यीशु मसीह ने, जो एकमात्र योग्य है, जो एकमात्र मूल्य चुकाने के तैयार है, उसके द्वारा मैं और आप पुनः खरीदे गए। अब हम पाप से छुटकारा पा करके हमने जीवन में प्रवेश किया है। मेरे प्रियो, जब तक एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से प्रभु उद्धारकर्ता ना ग्रहण करे, पापों से मन ना फिराए, पश्चाताप ना करे, प्रभु यीशु मसीह हमें अपने आप द्वारा ना खरीदे, ना मोले, तब तक हम उसके राज में नहीं शामिल हो सकते। और इसलिए हमें समझना है, बार बार ये सुसमाचार आपके सामने दिया जाता है और ये सुसमाचार पूरे संसार में प्रचार किया जाता है और ये अंत तक प्रचार किया जाएगा। हो सकता है लोगों के कहने में सुन सुन के वो ऐसा लगे, अरे ये तो यही प्रचार करते, नहीं, ये महत्वपूर्ण है, बिना इसके हमारे जीवन की यात्रा आरंभ नहीं हो सकती। जब तक एक गाड़ी में अगर पेट्रोल ना हो और चाबी आप ना लगाएं, वो स्टार्ट नहीं हो सकती। हमारे जीवन में जब तक परमेश्वर का आत्मा कार्य ना करे, जब तक हमारा संबंध उस प्रभु से स्थापित ना हो, जब तक हम पाप से छुटकारा ना पाएं, हम प्रभु के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारी क्रियाएं, हमारे काम, हमारे सब कुछ संसार और शरीर में ही रहेंगे। और इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको समझना है। तो ये प्रभु यीशु मसीह योग्य व्यक्ति है, आगे चल के देखेंगे ये कौन है। तीसरे पद में, पर्शन में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे उस पुस्तक को खोलने और पढ़ने के योग्य कोई ना मिला, कोई ना मिला। और स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे। अब जब स्वर्ग में बात आ रही है तो अभी कलीसिया स्वर्ग में है, लेकिन कलीसिया का कोई भी व्यक्ति, पास्टर, प्रचारक, सेवक, उस सील को नहीं खोल सकता, उस सील को नहीं खोल सकता। या कोई और, जितने भी बड़े बड़े प्रचारक हो, जो कुछ भी आप पृथ्वी रह के जाए, उन्होंने जितने बड़े बड़े प्रचार करा, जो कुछ भी कराओ, उनके पास वो अधिकार नहीं है। इस पृथ्वी पर, पृथ्वी पर कोई ऐसा ज्ञानी नहीं, कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं, कोई ऐसा अद्भुत व्यक्ति नहीं जो उसको कर सके। पृथ्वी के नीचे, पाताल लोक में भी कोई नहीं कर सकता। लेकिन तब कह रहा है, इस पर मैं फूट फूट कर रोने लगा। क्यों फूट फूट कर रोने लगा? क्यों फूट फूट? यूहन्ना इस दर्शन को देख करके रो रहा है, उसका हृदय टूट चुका है, उसके हृदय में व्याकुलता है, वो चाहत हो रहा है कि ये मोहरें खुल जाएं और वो खुलने के बाद वो सारी चीज प्रकाश में आ जाए, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं है और इसको देखकर वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? वो याद कर रहा है कि सच में किस प्रकार से मनुष्य, जिसको परमेश्वर ने अपने रूप में बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था, जिसको उसने अपने हाथों से सृजा, जिसमें अपना श्वास फूका, वो भी मनुष्य इस प्रकार से हो गया कि अब वो विनाश की ओर पहुंच गया है। वो तो मनुष्य की स्थिति को देख के, मनुष्य की दशा को देख करके वो रो रहा है। और इसलिए भी रो रहा है कि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, कोई भी मनुष्य नहीं है मेरे प्रियो। पर क्या हुआ? उसका रोना काफी नहीं था, लेकिन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या पढ़ने योग्य कोई ना मिला। पांचवा पद, तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, देख, यहूदा के कुल का वो सिंह जो दाऊद का मूल है विजय हुआ है, कि इस पुस्तक को और उसकी सात मोहरों खोले। कोई नहीं है, लेकिन एक है, एक है। वो कौन है? यहूदा के कुल का सिंह है और दाऊद का मूल है। पिछली बार भी हम यहूदा के कुल की बात देख रहे थे। यहूदा उन याकूब के 12 बेटों में से एक बेटा था, एक ट्राइब था। आइए पढ़ लीजिए मेहरबान से, उत्पत्ति उसका 49 अध्याय, 49:8 पद, हे यहूदा, तेरे भाई तेरी प्रशंसा करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है, यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र तू शिकार करके ऊपर चढ़ गया। अब ये तब दसवें पद में, यहूदा से तब तक राजदंड ना छूटेगा और ना उसके पैरों के बीच के शासकीय राजदंड हटेगा जब तक कि वो शीलो ना आए, और राज राज के लोग उसकी आज्ञा मानेंगे, और राज राज के लोग उसकी आज्ञा मानेंगे। सो यहूदा के लिए परमेश्वर ने अपने वचन में याकूब के द्वारा ये भविष्यवाणी करी थी, ये आशीष मिली थी। और प्रभु यीशु मसीह यहूदा गोत से इस संसार में आया, यहूदा गोत से दाऊद आया, दाऊद जिसके लिए परमेश्वर निकला है, परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति है दाऊद, वो आया। और इसलिए उसके लिए लिखा है यहाँ पर, जो दाऊद का मूल है, दाऊद का मूल विजयी हुआ है, वो विजयी हुआ है। और मेरे प्रियो, हम इस बात को दें कि वो इस पुस्तक को और उसकी सात मोहर खोले, कोई नहीं है लेकिन एक है, वो यीशु मसीह है। तब क्या हो रहा है, परमेश्वर की क्या योजना है? परमेश्वर की योजना ये हो रही है कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया है, जिस व्यक्ति ने इस मोहर को खोलने के लिए तैयार है, और तब वो गुप्त बातें हैं धीरे धीरे वो स्पष्ट की जा सकेंगी। क्यों क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसा, क्यों प्रभु यीशु मसीह? क्या वो केवल इसलिए क्योंकि यहूदा के गोत्र से था? क्या इसलिए कि केवल वो दाऊद के मूल से था? इसलिए नहीं, इसलिए ऐसा नहीं, लेकिन उसके साथ कुछ विशेषता छिपी, आगे चल के हम पढ़ते हैं क्या वो लिखा हुआ है। छह पद में, और मैंने सिंहासन पर उन प्राचीनों के बीच में चारों प्राणियों सहित मानो एक बलि किया हुआ मेमना खड़ा देखा। मैंने मानो बलि किया हुआ एक मेमना खड़ा देखा। एक मेमना है जो बलि किया गया है। तो पुराने नियम में पापों के प्रायश्चित के लिए मेमने का बलिदान किया जाता था। वो वहां पर टेम्परेरी एक विधि थी, जिस विधि में होकर मनुष्य कुछ समय के लिए पाप मुक्त हो सकता था, कुछ समय के लिए पाप मुक्त हो सकता था। लेकिन उस विधि को मैं बार बार उसको जाना पड़ता था, बार बार याजक के पास जाना पड़ता था, और बार बार याजक मेमने को उसके पापों के लिए बलिदान किया करता था। लेकिन यहां पर एक मेमना है, वो उसके लिखा है कि यहां पर एक मेमना है जो बलि क्या हुआ है। और मेरे पियो, मेमना कौन है? वो मेमना उसके बारे में आगे अभी हम और देखते हैं। तब वो कहता है कि वो मेमना खड़ा है, उसके सात सिंह और सात नेत्र हैं। सात सिंह, सिंह जो है बाइबल में सामर्थ को प्रकट करता है, सामर्थ को प्रकट करता है, अधिकार को प्रकट करता है। नेत्र जो है वो उसकी वो दृष्टि चारों ओर लगी रहती है। इसीलिए बार परमेश्वर वचन कहता है और हम याद करते हैं, परमेश्वर हमें देखता है। मैं कई बार एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बार एक गुरुजी थे, उनके दो शिष्य थे, और उनके दो शिष्य थे, उन्होंने दोनों शिष्यों को बुलाया और दोनों शिष्यों को बुला करके कहा, तो उनके हाथ में एक कबूतर दे दिया कि दोनों शिष्य का बेटा तुम जाओ और जा करके ऐसी जगह पर जाओ जहाँ कोई तुम्हें ना देखे, और इसको तुम मार करके लाओ, काट करके लाओ। एक शिष्य गया, गया उसने चारों तरफ देखा, उसको एक कमरा दिखाई दिया। उसने कमरे को अच्छी तरह से बंद करा, कर्टन को चारों तरफ से बंद करा, उसके बाद सारी खिड़कियों बंद करा उसको देने, और सारे बंद करके अब देखा उसने कि कोई भी ना बाहर से कोई देख सकता है ना अंदर से बाहर कोई देख सकता है, और पूरी रीत से सिंगार करके उसने उसको काटा और काट के ले आया। दूसरा शिष्य भी आया थोड़ी देर बाद, और दूसरा शिष्य उस कबूतर को ऐसे ही लेके चला आया। अब दोनों, एक ने काट के लेकर आया क्योंकि वो ऐसी जगह पे गया जहाँ पे चारों तरफ से बंद था, कोई देख नहीं रहा था। दूसरा, तो गुरु ने पूछा क्या कि तुम ले आए? उन्होंने कहा, उससे पूछा, हाँ मैं गया, मैंने कमरे को देखा, कमरा चारों तरफ बंद करा, उसमें अच्छी तरह से कर्टन डाले, काले पर्दे डाले, सब कुछ उसको बंद कर दिया, कुछ नहीं था, बाहर से भी जरा सी लाइट नहीं आ रही थी, कुछ नहीं आ रहा था, सब अंधकार था, कोई मुझे नहीं देख रहा था, मैंने किसी को नहीं देखा, और मैंने उस स्थान में, शाबाश बेटा। अब दूसरा आया, कहले इसको तो ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ पर इसने देखा कि कोई नहीं देख रहा, उसने काट के लिया, तुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली? उसने, गुरुजी नहीं, मैं गया, मैंने बहुत कोशिश करी कोई ऐसा स्थान मिल जाए, लेकिन मैंने बाद में इस बात को देखा, मनुष्य तो नहीं देख रहा है लेकिन परमेश्वर देख रहा है, मनुष्य तो नहीं देख रहा है लेकिन परमेश्वर देख रहा है। उस गुरु ने कहा, शाबाश बेटा। मेरे पे कई बार हम ऐसी जीवन व्यतीत करते हैं, हम सोचते हैं मनुष्य नहीं देख रहा, हमारे जिम में आता है, हमारे जिम में निर्बलता आती है, मेरे जिम में आता है, आपके जिम में आता है, हमें सावधान रहना है। तो मैंने कहा कि सात आत्माओं के बारे में हमने पिछली बार भी देखा था, सात आत्माओं, कह रहा है कि सात सिंह सात नेत्र, सिंह सामर्थ्य को प्रकट करता है, उसके अंदर एक सिद्धता की सामर्थ्य, और सात नंबर जो हमने इस बात को भी देखा था वो परफेक्शन को प्रकट करती है, सिद्धता को प्रकट करती है, पूर्णता को प्रकट करती है, कंप्लीशन को प्रकट करती है, सात। और प्रभु यीशु मसीह हमारा परफेक्ट सिद्ध मेमना है, पूरी रीत से उसमें कोई भी दाग नहीं है, मनुष्य में दाग है लेकिन उसमें कोई भी दाग नहीं। मेरे प्रियो, जब लोग मेमने को बलिदान चढ़ाते थे पापों के छुटकारे के लिए, वहाँ पर भी व्यवस्था में ये आज्ञा दी गई थी कि तू बिना दाग के बिना दोष के मेमने को बलिदान करना, फिर भी उनमें कोई ना कोई दोष पाया जाता था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जब प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ वो ऐसा मेमना जिसमें किसी प्रकार का भी दोष नहीं, वो निर्दोष मेमना मेरे और आपके लिए बलिदान किया गया। तब आगे चलकर कहता है, और ये सात आत्माएं जो समस्त पृथ्वी पर भेजी गई, हमने पिछली बार सात आत्माओं को देखा था किस रीति से यशायाह वर्णन करता है, जो बुद्धि का आत्मा है, समझ का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है, यशायाह उसके 11वें अध्याय में। सो तब आगे चल करके कहता है 7वें पद में, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले लिए। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। उसने आकर, कौन था? पिता सिंहासन पर विराजमान है, दाहिने हाथ में उसके पास वो पुस्तक है, जिस कॉरल में बता रहा था वो है, जो रोल किया गया है, जिसमें मोहर लगी गई है, और उसने उसके हाथ से पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चार प्राणी और 24 प्राचीन मेमने के सामने गिर पड़े, उनमें से प्रत्येक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे, जो पवित्र लोगों की प्रार्थना थी। अब क्या है? उसने ले लिया, तब ये लोग गिर करके उसके आराधना करने के लिए उपासना करने लगे। 24 प्राचीन, पिछली बार हमने देखा था चार प्राणी, अभी भी मैं थोड़ी देर पहले समझा चुका हूँ, हाथ से लेकर अब हाथ में वीणा है, वीणा के द्वारा वो ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, धूप से भरे सोने के कटोरे हैं। ये क्या है? ये पवित्र लोगों की प्रार्थना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हो सकता है जब हम प्रार्थना करते हैं तुरंत हमें उत्तर ना मिले, लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी समझ के अनुसार नहीं लेकिन अपनी समझ के अनुसार उत्तर दे। कई बार हम इस बात से सोचते हैं प्रार्थना हमारी, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। परमेश्वर हमारी उन प्रार्थनाओं को उस कटोरे में, जो कीमती सोने का कटोरा है, बहुमूल्य कटोरा है, उसमें वो मेरे और आपकी प्रार्थनाओं को उस धूप के समान जो हमेशा जलती रहती है, जिसकी सुगंध आई है, वो सुगंध फैलती रहती है, उसमें वो इकट्ठा करता है, परास्त ना हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हम बहुत बातों के लिए बहुत बार प्रार्थना करते हैं और कई बार हम थक जाते हैं, कई बार हम सोचते हैं कब हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। हमारे मन में आता है शायद हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, हो सकता है आवश्यकता कुछ हो, आवश्यकता भी पूरी हो गई, लेकिन बहुत जीवन में ऐसी बातें हैं, संघर्ष है, कोई परीक्षा है, कोई परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, संबंधों में, बहुत सारी बातें ऐसे जिसके लिए हम गंभीर से प्रार्थना करते हैं, कई बार आंसू आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा नहीं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उस कटोरे में रखता है और वो अपने तरीके से हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, और इसलिए हमें उस परमेश्वर पर विश्वास करना, उन प्रार्थनाओं के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। हम नहीं समझ सकते, कई बार बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे से कुछ मांगते हैं, हम उनको मना कर देते हैं, वो बहुत दुखी होते हैं या चिड़चिड़ाते हैं, खिसियाते हैं, लेकिन माता पिता के अंदर ये रहता है कि हाँ मुझे अभी ये 3 साल का इसलिए मैं नहीं, लेकिन जब 4 साल का है, 5 साल का होगा, तब मैं इसको ये चीज़ दूंगा जो चीज़ मांग रहा है, और शायद 2 साल बाद। लेकिन वो 2 साल का वेट करना उस बालक के लिए, बालिका के लिए बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है, यहाँ तक कि उसका भरोसा अपने माता पिता पर टूटने लगता है। वो कहता है आप मेरे से प्यार नहीं करते, आपने मेरे लिए नहीं करा, लेकिन माँ बाप जानते हैं कि उनके बच्चे के लिए क्या करना है। वो हमारा परमेश्वर उस हमारे संसारिक माता पिता से कहीं बढ़कर है, और इसलिए मेरे प्रियो ये प्रार्थनाएं जो इसको कटोरे में रखी जाती हैं वो महत्वपूर्ण है। सो हमारा मन व्याकुल ना हो, हम घबराए ना, हम परेशान ना हो, हम आताश ना हो, लेकिन अपनी प्रार्थनाओं को हम परमेश्वर के सामने रख सकें। तब वो क्या कह रहा है, और उन्होंने ये नया गीत गाया, तू इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि क्यों तू योग्य है। अब यहां पर इसका उत्तर है, क्योंकि तूने बध होकर अपने लहू से प्रत्येक कुल, भाषा, लोग, जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है। इसलिए तो योग्य है कि तूने अपने आप को बध होने दिया है। ओ यशायाह 53 अध्याय हम पढ़ते हैं उसको, वो हमारे लिए बध किया गया, उसने अपना मुंह ना खोला। ओ पिता परमेश्वर, सचमुच में वो जब हाकिमों के सामने खड़ा हुआ था तब उसने मुंह ना खोला। उन लोगों ने कितनी दिख उसको वेदना दी जब उसको पकड़ा गया। वो रात में तो प्रार्थना करता, आंसू बहा बहा के प्रार्थना करता। उस समय जब उसको पकड़ कर ला करके उसका ठट्टा उड़ाया गया, उस पर कांटों के ताज रखा गया, उसको मारा गया, उसको वेदना दी गई, तब भी वो शांत रहा। उसके लिखा है तब भी वो शांत रहा। वो वध किया हुआ मेमना प्रभु यीशु मसीह, इसलिए वो इस योग्य है कि उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, वध हो जाने के लिए दे दिया। वो योग्य है, वो योग्य है, इसलिए योग्य है ताकि उसके वध किए जाने के द्वारा मैं और आप छुड़ाए जा सके, मेरे और आपको जीवन मिल सके। इसलिए कहता है वो वध किया हुआ मेमना, बहुत सुंदर लिखता है कि लहू से प्रत्येक, उसने बध होकर अपने लहू को बहाया और लहू से कुल, भाषा, लोग, जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको विभिन्न जातियों में से, विभिन्न भाषाओं में से, विभिन्न पृष्ठभूमि से, विभिन्न कुल में से लेकर मोल लेकर के अपना बना लिया है। कैसे? उसको कीमत चुकाने के लिए उसे अपना लहू बहाना पड़ा। उस कीमत को चुकाने के लिए वो मेरे और आपके लिए क्रूस पर मारा गया, उस पर ताड़ना पड़ी। वो बद क्या मेमना है, इसलिए वो योग्य है, इसलिए योग्य। और कितनी सुंदर बात है कि उसने मुझे और आपको खरीद लिया, उसने मूल्य चुकाया। भूमि को कौन छुड़ा सकता था? भूमि को वही छुड़ा सकता था जो योग्य है। भूमि को वही छुड़ा सकता था जो मूल्य चुका सके। मेरे प्रियो, उसने शैतान से मुझे और आपको पुनः वापस ले लेने के लिए अपने कीमती लहू को दे दिया, ताकि उस लहू के द्वारा मैं और आप खरीदे जाएं और हम शैतान के बंधन से, उससे छुटकारा पाकर आजाद हो जाएं, और फिर हम उसी प्रकार की भूमि में, जिसको आगे चल के हम प्रकाश वाक्य देखते हैं, जो अदन की वाटिका में जैसी पूर्ण थी, उसी में हम प्रवेश कर सकें। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि उत्पत्ति का पहले 2 अध्याय और प्रकाश वाक्य के आखिरी 2 अध्याय दोनों एक समान हैं, और बीच में हम पाप को देखते हैं, लेकिन जो भी क्रिया प्रभु यीशु मसीह ने की है वो मेरे और आपको उस अंतिम 2 अध्याय में पहुंचाने के लिए, जो प्रकाश वाक्य में, जो नया यरूशलेम है, नई शहरपना है, नया स्थान है, नई प्रजा है, नए लोग हैं, सब कुछ वहां पर पहुंचाने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या मेरा और आपका हृदय उत्साहित नहीं होता? क्या मेरा आपका हृदय उसके प्रति धन्यवादित नहीं होता? ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो, मैं तो इस योग्य नहीं था, नहीं थी, लेकिन आपने मेरे लिए कीमत चुकाई है, आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, बध किए गए, ओ प्रभु आपने मुझे अपना बनाया है, कहता है कर लिया है। अतः वो कहता है 10 पद में, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज और याजक बनाया, वे पृथ्वी पर राज करेंगे। ना केवल उसने बध किया, छुड़ा लिया, लेकिन मुझे और आपको याजकों का समाज बना लिया। पहला पत्रस में लिखा हुआ है 1 अध्याय के 19 पद में कि राजपदधारी याजक का समाज है। उसने मुझे और आपको ना केवल उस समाज में शामिल कर लिया, लेकिन मेरा आपके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष दे दी कि एक दिन हम 12 गोत्र के लोगों का न्याय करेंगे। हमारा न्याय होगा, लेकिन न्याय के साथ साथ, हमारा न्याय के साथ साथ हमें उन दूसरों का भी न्याय करने का अधिकार दिया। कितनी बड़ी बात है! हम कहाँ के थे? हम तो कीचड़ में थे, दलदल में थे, नाश हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे। हमको तो शैतान ने खरीद कर अपना बना करके विनाश की ओर दिन पर दिन लेता चला जा रहा था। ओ मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उसके प्रेम के लिए, उसकी भलाइयों के लिए, उसकी बड़ाई के हम करते हैं कि जय जयकार करते हैं, ऐसा करा। तब उसके बाद हम पृथ्वी पर आचार 11 पद से लेकर के हम आगे चल के देखते हैं किस प्रकार से उसकी महिमा और करते हैं। फिर मैंने देखा तो सियासन प्राणियों और प्राचीनों के चारों ओर बहुत से सरदूतों का शब्द सुना। जिनकी संख्या लाख और करोड़ थी, और वे ऊंची आवाज से कह रहे थे, क्या कह रहे थे, बध किया हुआ मेमना सामर्थ धन बुद्धि शक्ति आदर महिमा धन्यवाद के योग है। ओ ये मेमना जो मेरे और आपके लिए बध किया गया, ये मेमना जो मेरे आपके लिए जिसने उसने कीमत को चुकाया, जिस मेमने ने मुझे और आपको छुड़ा लिया कीमत दिला के, ओ मेरे पुराने बिगड़े हुए रूप को जो अदन की वाटिका में पाप के कारण बिगड़ गया था, जो दंड की आज्ञा मुझ पर लग चुकी थी, आप पर लग चुकी थी, जो विनाश मेरे और आपके जीवन में आ चुका था, जो मृत्यु हमारे पर ठहराई जा चुकी थी, उन सब से छुड़ा करके उसने अपने राज में प्रवेश करा करके, राज में रह करके प्रभु ने हमें इस योग्य बना लिया। क्यों नाम उसका सचमुच में उसके मेमने का जो सामर्थ धन महिमा शक्ति आदर के योग्य है उसका धन्यवाद करें। वो धन्यवाद के योग्य है, वो धन्यवाद, ये स्तुति है, ये प्रशंसा है, ये आराधना है। जब हम परमेश्वर के महान कार्यों को देखते हैं जो उसने मारे लिखे, जो उसकी उसकी वैभव को दर्शाते हैं, उसकी महिमा को दर्शाते हैं, उसके महान गुणों को दर्शाते हैं, तब हम उसकी प्रशंसा और बढ़ाई करते हैं। 13 पद में, फिर मैंने सब सृजी हुई वस्तुओं को जो स्वर्ग में पृथ्वी पर पृथ्वी के नीचे समुद्र में है अर्थात उनमें सब वस्तुओं को कहते सुना। अब क्या हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है, ये कहाँ जाएगा, ये उधर जाएगा, जब नई पृथ्वी होगी, नया यरूशलम होगा, सब कुछ नया हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। प्रकाशित वाक्य के अंत में हम उसको देखते हैं, बदल जाएगा जब उन वस्तुओं को कहते सुना। क्या कह रहे हैं, वो जो सिंहासन पर बैठा उसका और मेमने का धन्यवाद हो। सिंहासन पर कौन बैठा है, परमेश्वर पिता सिंहासन पर बैठा है और मेमना प्रभु यीशु मसीह है, उसका धन्यवाद हो। कई बार लोग जो जीसस ओनली मानते हैं वो केवल यीशु तक फोकस करते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि बिना पिता बिना पवित्र आत्मा के यीशु अकेला सब कुछ नहीं है। और कहीं भी बाइबल में आप देखेंगे त्रिएकता आरंभ से लेकर के अंत तक दिखाई देती है। सो यहां पर वो कहता है, तब क्या हुआ, और चारों प्राणी आमीन कहते रहे तथा प्राचीनों ने दंडवत करके उपासना की। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर महिमा तथा राज युगानुयुग रहे। ओ सचमुच में वो फिर आएगा समय जब उसका राज युगानुयुग का हो जाएगा, हम भी उसके साथ राज करेंगे, सनातन काल तक हम उसके साथ राज करेंगे, क्योंकि उसका राज सनातन काल का होगा। एक दिन आएगा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ को बदल देगा और अपने राज को सनातन काल के लिए स्थापित करेगा। ओ मेरे प्रियो, कितना सुंदर दिन होगा। हो सकता है कि मुझे और आपको पीड़ाओं में से होकर जाना पड़े, हो सकता है मुझे और आपको वेदनाओं में से होकर जाना पड़े, हो सकता है मुझे और आपको परीक्षाओं में से होकर जाना पड़े। इस पृथ्वी पर जो दुख है, कष्ट है, क्लेश है, कई तरह के कष्ट हैं, कई तरह के क्लेश हैं। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ कष्ट क्लेश है, शायद हमारे परिवार में हमारी आर्थिक स्थिति को देखकर हम कष्ट और क्लेश को देखते हैं, बहुत सारी स्थिति है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हम सनातन काल तक प्रभु के साथ राज करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा और युगानुयुग तक हम उसके साथ जिएंगे, ये एक आशा है। और मेरे प्रियो, तो चौथा और पांचवें अध्याय में हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या करने जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास क्या अधिकार है। पहले अध्याय में हमने प्रभु यीशु मसीह के नामों को देखा था, दूसरे तीसरे अध्याय में हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया को देखा था, कलीसिया किस प्रकार से स्थापित होकर कलीसिया बढ़ेगी और कैसे कलीसिया बढ़ना है। और तब उसके बाद चार और पांच अध्याय में, इससे पहले हम छह अध्याय में उस पुस्तक को खोलते हुए देखें और एक एक कर करके पर्त बाई पर्त हम देखते चले जाएं कि क्या उस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, कौन सी घटनाएं घटित होंगी, कौन सी बातें धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। अब उसके बाद छठे अध्याय से वो वर्णन होता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा। और तब लेकिन अंतिम बात यह है कि उन सब कुछ के बाद भी अंतिम बात होगी, परमेश्वर का राज युगानुयुग तक स्थापित होगा। और कितनी अच्छी बात होगी कि मैं और आप जिन्होंने अपने वस्त्रों को उसके पवित्र लहू से धो लिया है, जिन्होंने सच्चाई के साथ उसको अपना जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जो उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं, वो उसके साथ सनातन काल तक राज करेंगे। ये परमेश्वर का वचन है और मेरे मनुष्य का वचन नहीं, परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी परंतु परमेश्वर का वचन बिना एकमात्र बिंदु पूरा हुए नहीं टलेगा। और मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के वचन का सम्मान करना है और उसके सामने गिरना है, झुकना है, दंडवत करना है, उसकी आराधना करना है और उससे कहना है, प्रभु अपने वचन को मेरे जीवन में आप पूरा होने दीजिए, अपने वचन को आप मेरे जीवन में पूरा होने दीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे।